ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साक्षी व सहयोगी बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप सवेरे भी शाम को भी रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है, इसके साथ साथ आप कौन बनेगा पद्मा पद्मपति उसके लिए भी यही लिंक है। और आप यदि YouTube पर जुड़ना चाहें तो YouTube पर भी लाइव जुड़ सकते हैं, उसके लिए भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप सामने इस वीडियो में ही चलती हुई नीचे छोटी लाइन के अंदर आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि जो है ना आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी हमें दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन को सुधारो। प्रीत बुद्धि बनो और अपनी चलन को सुधारो। किससे प्रीत बुद्धि बनना है? परम पिता परम आत्मा से। परम पिता परम आत्मा से प्रीत बुद्धि बनो और अपने आप को सुधारो, अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ। ओम शांति। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं कर सकता? ज्ञान का उल्टा नशा भी होता है, ज्ञान का उल्टा नशा। हम तो ईश्वरीय संतान है, ये क्या है? इनको तो कुछ पता ही नहीं है। बड़े बनते अपने धर्म के ठेकेदार। हम ठीक है तुम हो, परंतु काल तक तुम भी वही थे, काल तक तुम भी वही थे। अब तुम बन गए हो, ठीक है, तुम्हें भगवान का परिचय मिल गया है, तो इस परिचय को सबको देना है, सबको उसका अधिकारी बनाना है। सिर्फ ये सुना कि आप अधिकारी बन गए हो तो बस हो गया काम आपका। तो हमें परमात्मा का परिचय मिला है, तो हमने भी सबको परमात्मा का परिचय देना है, ताकि वो भी अपना अधिकार लेकर के इस दुनिया में अपना भी भाग्य बनाएं और वो भी सत्युग के मालिक बने, ताकि वो भी हमारे साथ आ सके। उत्तर, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं। पहली बात क्या बताई है? जो बाप को यथार्थ जानकर, यथार्थ जानना माना एक्चुअल में परमात्मा है तो क्या है। परमात्मा को तो सारे अपने अपने तरीके से जानते हैं, अपने अपने तरीके से जो उनको लगा उसको उन्होंने परमात्मा मान लिया, परंतु यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बात की महिमा करते हैं। यथार्थ जानना माना एकदम एक्यूरेट जानना। यथार्थ का मतलब है एक्यूरेट। अब एक्यूरेट ना जानकर हम दुनिया भर के भगवानों को पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पता तो था ही नहीं। दिल से बाप की महिमा करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं। जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं वे बाप को याद कर नहीं सकते, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे, याद करें तो अपना समाचार किसको देंगे, बाप को दे, अवश्य दे। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहां मूर्छित तो नहीं हो गया, बेहोश हो गया हो, बीमार हो गया हो, क्योंकि बीमार तो सारी दुनिया है, ठीक होने के लिए आई है। परंतु अब यथार्थ रीति बाप को याद करेंगे। यथार्थ रीति बाप को याद करने का मतलब क्या है? बाबा की को एक्यूरेट समझते हुए उसका कहना पूरा का पूरा मानना। जिसको ये यकीन हो गया कि ये मेरा बाप है, हम एक बाप के बच्चे हैं, वो परमात्मा के डायरेक्शन पर चले बिना रह नहीं सकता। क्योंकि जिसको अभी कहीं ना कहीं डाउट है, यार बाबा पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, सारे मेरे को मानने, कैसे मान लेवे, बाबा खुद समझता नहीं है कि कैसे मान लेवे। इस संसार के अंदर हमें पहले तो घर गृहस्थी में फंसा दिया, अब कहता है छोड़ दो इसको, अब कहता है ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, कितने नियम कितने कंडीशंस लगा देता है, कितनी माने इसकी। तो हमें बाबा को यथार्थ समझना और बाप की डायरेक्शन पर चलना। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद, हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। ये कौन से हद और बेहद के दो बाप है हमारे? एक लौकिक और एक पारलौकिक। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप। बेहद का मतलब कंप्लीट, संपूर्ण। वो हद का बाप है जो घर में है, वो हद का बाप। हर एक जीव आत्मा का अलग अलग है, हर एक जीव आत्मा का, कहना चाहिए जीव का, वो है जीव का बाप। और फिर बाबा है आत्मा का बाप। आत्माओं का बाप एक ही है और जीव का बाप सबका अलग अलग है। ये नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते, कोई 1% और कोई 95%, कितना अंतर है। कहां साहु जी परसेंट धारण करते हैं, ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा, ये तो समझने की बात है कि दो घराने होंगे, राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा में आत्मा के मनुष्य, प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा, बाप समझाते हैं। ये पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं, सभी अपनी बुद्धि के अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ाई धारण की है उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती, पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान होगा, आगे चलकर क्या होगा, इम्तिहान होगा। बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके, बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके। तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, परंतु परंतु अभी भी समझ सकते हो। तो हम हो, हम किस पद के लायक हैं? भल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं। बाबा पूछते हैं ना, शर्माते हैं, हाथ नहीं उठाएंगे तो कहेंगे भाई, देखेंगे वो तो इनको, इनकी आंखें तो बंद करो, बाबा जाने और मैं जाने, तो शर्म के मारे क्या करते हैं, हाथ उठा लेते हैं। पर तू समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। अंदर समझते हैं कि हम नहीं बन सकते, फिर भी हाथ उठा देते हैं। ये भी अज्ञान ही कहेंगे ना, इसको समझदारी तो नहीं कहेंगे ना। जब पता है कि मैं ये बनने वाला नहीं हूं, मैं अपनी आदतें सुधार नहीं सकता हूं, मैं पतित का पतित ही रहूंगा, बाबा क्या बाबा का बाप भी आ जाए मुझे समझाने के लिए, मैंने नहीं बदलना। हाँ, बाप तो झट समझ जाएंगे, बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। दुनिया में पढ़ाई पढ़ने वाले भी स्टूडेंट में अक्कल होती है कि मेरे को नहीं आता है तो बता देता है, सर जी मेरे को नहीं आता, मुझे दोबारा आप समझाओ। वो समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं है, पास नहीं होंगे। वो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने नंबर लेंगे, ऐसे थोड़े कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। और यहां तो कई बच्चों में इतना भी अक्कल नहीं है, देह अभिमान बहुत है, बल आए हैं ये देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए, तब तो देवता बनेंगे। बाप कहते हैं विनाश काली विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है, कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि को का यथार्थ अर्थ क्या है, यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो क्या समझेंगे, बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो बाहर वाले क्या समझेंगे। बाप को याद करना ये तो हुई गुप्त बात, बाप को याद करना गुप्त बात क्यों है?
बाप भी गुप्त है,
नहीं बाप तो गुप्त है, बाप को याद करना गुप्त क्यों है?
मन मन में बाप को याद, मनन चिंतन करते
हैं, मनन चिंतन तो करते रहेंगे तो ये गुप्त क्यों कहा इसको बाबा ने?
बात नहीं बोल रहा ना, जैसे आप लेक्चर दे रहे
हैं, जान देना मतलब सामने पता लगता है वे कौन कैसे बोल रहा है, कैसे बता रहा है। पर तो याद करना, तो अब आप बैठ गए हो कौज, मैं याद कर रहा हूं, अब आपकी मर्जी बाबा को याद करो, हाँ आप मर्जी है दुनिया को याद करो, ठीक है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो ये सबका कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि भी तुम क्यों बाप को याद नहीं करते, ठीक है ना। जो बाप को याद करेगा वो हमेशा खुश रहे, वो हमेशा खुश रहेगा, हर्षित मुख, मुस्कुराना, बस वो हर टाइम खुश रहेगा, उसकी खुशी गायब नहीं होगी। उसे नशा रहता है परमात्म डायरेक्शन पर चलने का। ये तो गुप्त बात है, पढ़ाई तो गुप्त नहीं है, पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबर वार होते हैं, एक जैसा थोड़े पढ़ेंगे, कभी एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे ना। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी है, अभी तो ये क्या है, बच्चा है। ऐसे बेहद के बाप को तीन तीन चार चार मास याद भी नहीं करते, इतने अच्छे बच्चे हैं, तीन तीन चार चार मास याद नहीं करते। याद ना करना माना बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, अपनी ही चलाते रहते हैं। मुरली रोज सुनते हैं, चलाते अपने हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं? क्योंकि गुप्त है ना, किसी को पता ही नहीं है, तो मालूम कैसे पढ़ते याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूं। कौन सा बच्चा घर में आकर के अपनी मां को या बाप को बताएगा खुशी से? हाँ, जो सक्सेस हुआ होगा, जो सफल हुआ होगा, जिसने कुछ पाया होगा, वो तो रहा शाम को आएगा अपने माँ बाप को कुछ ना कुछ बताएगा, आज ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ। जो करके आया होगा घाटा, वो कैसे आएगा? चुपचाप आएगा, मुंह लटका के बैठ जाएगा, एक साइड खाना खाएगा और चला जाएगा सोने के लिए। बाबा को खुशी से सवेरे अमृत वेले उठ के कौन बात करेगा? जिसने कुछ पाया होगा। अमृत वेले अपने आप को सुधारने के बाद सारे दिन में कुछ प्राप्ति की होगी, तब तो उसको आएगा। क्या क्या सर्विस करता हूं, बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहां बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया, कहां बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं, बाप भी समझते हैं बच्चा जीता है, बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते हैं, कभी छिप नहीं सकते हैं। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं। बाप क्या करते हैं? बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं, कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप भी याद कैसे करेंगे? तो बाप भी याद कैसे करेंगे? याद से याद मिलती है। हाँ, ऐसा होता है ना, बाबा की गोद में आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो तो आप बाबा की गोद में बैठे हो, बाबा आपको याद है और बाबा आप जिंदा हैं, और आपने बाबा की श्रीमत पर चलना बंद कर दिया तो बाबा तुरंत जैसे ही आप रावण की मत पर चलते हो तो उतार के फेंक देता है ना, मर गया ना, मर गया। तो उसको बाबा कहता है मेरे को लिख नहीं रहा, मेरे को बता नहीं रहा कि मेरी क्या प्रोग्रेस है, इसका मतलब वो मर तो नहीं गया बिल्कुल, मेरी श्रीमत को छोड़कर रावण की मत पर चलने लग गया हो। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, ठीक है क्या महिमा करनी है, जैसे बाबा जैसे हम, वो अपना पाठ बजा रहे हैं, हम अपना पाठ बजा रहे हैं, ठीक है। बाबा का काम है कहना करो करो करो, हमारा काम है एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, खाओ पियो मौज करो मस्त करो। चार बार कहता है दूध उधार लेकर घी खाओ,
उधार लेकर।
और किसने देखा है? कौन होता? कोई भी नहीं होता। वो कहता है हाँ देना ही नहीं है, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं क्या होता है, मतलब उसका सिद्धांत यही है, खाओ पियो करो अनुम, बर्तन करेगा परमानंद, बर्तन साफ करेगा परमानंद, हमने अपना खाना पीना और मौज रखो बस, उधार लेकर घी खाओ भूल जाओ, किसने देना? शरीर छूट गया कौन आएगा लेने के लिए, और किससे लेगा? ले ले पड़ा है शरीर, नहीं ले सकता कुछ, क्या कर लेगा कोई, ज्यादा से ज्यादा शरीर को खत्म कर देगा, कर दे शरीर को खत्म। बस उसे यही नहीं पता कि मैं आत्मा, वो आत्मा को भी नहीं मानता और परमात्मा को भी नहीं मानता, वो कहता है बस जो कुछ है बस यही जीवन है, अपना एंजॉय करो, सुखी रहो, खुश रहो एकदम। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। वेदों शास्त्रों को बिल्कुल नहीं मानता चार बार। बाबा कोई भबका आदि थोड़े ही दिखाएगा। भगवानोवाच, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूं। तुम ऐसे थोड़े ही समझते हो, तुम ऐसे थोड़े ही समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं श्री कृष्ण भगवानोवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूं बस। मैं क्या करता हूं? राजयोग सिखलाता हूं बस। उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी है, उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़े ही है रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधे धोरी में। गीता पढ़ी पूरी की और फिर गए अपने अपने धंधे धोरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़े कहेंगे। ये कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़े कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी है कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो कहेंगे नरक में है। किसको दुख मिला तो क्या कहेंगे? भी ये नरक में है। किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं, दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे, हम तो स्वर्ग में है। महल मारियां मोटरें आदि समझते हैं, हम तो स्वर्ग में है। गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। नरक भी स्वर्ग भी इकट्ठा चलता है। जब स्वर्ग सत्य था वहां भी नरक और स्वर्ग था। त्रेता आया तो वहां भी नरक और स्वर्ग था। द्वापर में भी नरक और स्वर्ग था। कलयुग में भी नरक भी है स्वर्ग। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। पहले पहले सबको बताना है कि तुम्हारे दो बाप हैं। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं, वे सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं। आत्मा ना तो कोई छोटी है ना आत्मा कोई बड़ी है। आत्मा और परमात्मा दोनों का साइज एक बराबर है। सभी आत्माएं हैं, वे भी आत्मा है और वे सदा परम धाम में रहता है। परमात्मा भी एक आत्मा है, वो सदा कहां रहता है? सदा परम धाम में रहता है, अर्थात परम अवस्था में रहता है। जगह में बनता नहीं, वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। परंतु वो भी ड्रामा में अपने पास के अनुसार ऐसी रेत बंधा हुआ है, वो भी सिर्फ 100 साल के लिए कहो या 99 साल के लिए कहो, इस धरती पर आकर पार्ट बजाते। इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। हमारे आना और परमात्मा के आने में क्या अंतर है? हम आकर अपना शरीर बनाते हैं, शरीर की पालना करते हैं, शरीर का श्रृंगार भी करते हैं, परंतु परमात्मा ये शरीर बनाता ही नहीं। शरीर की पालना क्या करेगा और उसका श्रृंगार भी क्या करेगा? मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूं, ये बात कोई बाहर का समझ ना सके। बात बड़ी सहज है, फर्क सिर्फ इतना है जो बात के बदले वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़, भूल, अपने आप को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो, कैसे कह सकता है कृष्ण? कृष्ण खुद देहधारी है, उसने खुद देह धारण की हुई है, वो दूसरों को कैसे कहेगा कि देह को भूल जाओ भाई? कृष्ण खुद जन्म लिया है, वो कैसे कहेगा कि मैं अजन्मा हूं? कृष्ण ने खुद पालना ली है, वो कैसे कहेगा कि मैं सृष्टि का पालन करता हूं? देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? कैसे कह सकता है कृष्ण? खुद देहधारी है और वो ये कहे कि देहधारी को याद करने से तुम्हारे पाप कैसे कटेंगे, ये कृष्ण तो नहीं कह सकता ना। इसलिए कृष्ण ने एक जगह ये कहा है, हे अर्जुन, तुम मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को, मेरे को नहीं याद करो, कृष्ण स्वयं शिवलिंग की पूजा करता है। तो जब कृष्ण स्वयं से शिव को याद कर रहा है तो दूसरों को कहे कि मेरे को याद करो, ये कहां का नियम है? श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है और कहां मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूं। परमात्मा कहते कहां मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूं और कृष्ण कितना छोटा बच्चा है, कितना फर्क हो गया। इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। ना मैं सर्वव्यापी हूं, ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। ना मैं सर्वव्यापी हूं, ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है, हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है, ना मुझे शरीर है और ना मेरे शरीर का कोई नाम है। परमात्मा का ना तो शरीर है और ना शरीर का कोई नाम। परमात्मा ही एक ऐसा है, उस आत्मा का नाम है, शरीर का नाम नहीं। किसका नाम है? आत्मा का नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूं, शिव बाबा क्या कहते हैं, मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूं, तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है। मुझे कहा जाता है, क्या कहा जाता है शिव बाबा? और क्या कहा जाता है? और हां जी, सदाशिव, सदा हमेशा वो शिव है। बाकी किसी को सदा नहीं बोलते पूरी दुनिया में, सदा राम नहीं कहेंगे, उनको पता है राम मर जाता है। सदा कृष्ण नहीं कहेंगे, उनको पता है कृष्ण मर जाता है। सदा गणेश नहीं कहेंगे, एक शिव को सदा कहते हैं, सदा शिव। क्योंकि शिव का भी यदि शरीर होता तो वो भी नष्ट हो जाता ना, वो तो आत्मा का नाम है। तो आत्मा का नाम, आत्मा ही अविनाशी है, तो परमात्मा भी क्या है, अविनाशी। अरे बाबा ये भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें क्यों करवा देता है ना, जिसको जो है ना पकड़ करके फिर आके सुधारता है हमें। कैसे, मैं ही सर्व का सदगति दाता हूं, सर्व का, और कोई सर्व का सदगति दाता हो नहीं सकता। आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कह सकते कोई भी आत्मा, मुझ आत्मा के सिवाय। मतलब आज सीधे लाइन में लगा रहा है एकदम, मुझ आत्मा के सिवाय कोई भी आत्मा सर्व का सदगति दाता नहीं कहला सकते। सर्व का क्यों नहीं कहला सकती, कैसे आदमी हो गई? ब्रह्मा बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी सर्व का सदगति दाता नहीं हो सकता, क्योंकि उसे स्वयं भी सदगति किससे लेनी है, शिव बाबा से। हम सबको सदगति प्राप्त करने की विधि उतनी समझा सकते हैं जितनी हमको समझ में आई है, परंतु परमात्मा वो तो सबको समझा सकता है ना, चाहे निमित्त वो किसी को भी बनाए समझाने के। परमात्मा की कभी दुर्गति नहीं होती, परमात्मा की कभी भी दुर्गति होती है क्या?
नहीं,
आत्मा की ही दुर्गति होती है। क्यों होती है दुर्गति? देह में आने के कारण, भोगता होने के कारण, देह को आके भोगती है आत्मा, इसलिए आत्मा की क्या हो जाती है, दुर्गति हो जाती। आत्मा की ही सदगति होती है, फिर परमात्मा आकर आत्मा की ही क्या करते हैं, सदगति करते हैं। ये सब बातें विचार सागर मंथन करने की हैं, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? खुद को समझ में आएगा तब तो हम दूसरों को समझाएंगे। चलो ये जबरदस्ती है कि हम दूसरों को समझाएं, जबरदस्ती है ना ये तो, रोज आना कह कह करके। परंतु माया ऐसी दुष्कर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर कहां बुद्धि रहती है, झरमुई झगमुई। झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं, कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं बाप को याद ना करने से। अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती, अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते माया गिरा देती। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं, माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। रावण राज्य खलास हो तो होना ही है। फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे, कल्प कल्प माया जीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की बात नहीं, ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं, देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे, पतित दुनिया की रहल रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है, मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है आज से 5,000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, क्या समझाया है? वो है फर्स्ट क्लास, कृष्ण क्या है फर्स्ट क्लास, वो है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी है, एक एक बात को अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई आकर सुने तो वंदर खाए, कोई कोई वंदर भी खाते हैं परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। बातें सुन रहे थे, कमाल है आपका ज्ञान तो बड़ा वंडरफुल है, पर तू क्या करे, हमारे पास समय नहीं, फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है, ये काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वे अक्सर नहीं बोलते, सिर्फ कहते हैं। मन को वश में करो, लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, बाकी मन अमन तो कभी होता नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, जीते को जो मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच, जीते जी मुर्दा, इस शरीर को मुर्दा कहे, जीते जी समझे कि ये शरीर मर गया, अब ये मर गया तो मेरे को ये कुछ भी करने के लिए नहीं कर सकता, ना ये पानी मांग सकता है, ना रोटी मांग सकता है, ना कुछ, मतलब ये संसारिक जो इच्छाएं हैं ऑटोमेटिक खत्म। अब इसको मैं जैसे चलाऊं चलाऊं, जो शरीर की रिक्वायरमेंट्स है वो बाबा ने कहा है पूरी करनी है, परंतु जो रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी करनी वो हमने इसकी सुननी नहीं। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है, आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है, मूल वतन में कर्म होता नहीं, मूल वतन में कर्म होता ही नहीं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहां फिरता है, बाप और सृष्टि चक्र को जानना, बाप को और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ना सफेद पोषधारी ने, ना सफेद पोषधारी ना सजे सजाए, सूक्ष्म वतन में ना तो सफेद पोषधारी है, ना सजे सजाए, ना नाग बलाए। ये नाग बलाए क्या मतलब है, ये क्यों कह दिया नाग बलाए? एक ही लाइन में बहुत सारी बातें बता दी। बस सांप ने लपेट रखे ना ढेर सारे, हाँ कैसे वह नाग बलाए कुछ नहीं होती है, पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं
भाई जी।
हाँ जी,
बेकारों को कहते हैं
नाग बला,
बेकार काम विरोध लोभ अहंकार।
नहीं, यहाँ भाई जी नाग बलाए शंकर के लिए कहा है, जो शंकर, फिर से देखो मैं आपको सुनाता हूँ। सूक्ष्म वतन में ना सफेद पोषधारी, ना सजे सजाए, ना नाग बलाए, पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। सांप लपेटे रखते है ना शंकर, बाबा कहते कोई सूक्ष्म वतन में शंकर वंकर कुछ नहीं होता। सफेद पोषधारी ब्रह्मा है, सजा सजाया विष्णु से आगे बता रहे हैं, मतलब ये वहां कोई ऐसा है ही नहीं सूक्ष्म वतन में, इससे ज्यादा क्लियर और क्या बताएगा बाबा। फिर से पढ़ रहा हूं, फिर से देखो। हाँ जी, हाँ हाँ, सूक्ष्म वतन में ना सफेद पोषधारी, ना सजे सजाए और ना नाग बलाए पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। अपनी ही बात को खुद ही काट रहा है बाबा, कौन समझाए? बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। ब्रह्मा यहां है, ब्रह्मा इस दुनिया में है, सूक्ष्म वतन में नहीं है। विष्णु के दो रूप भी यहां हैं। विष्णु के दो रूप क्या हैं?
एक श्री कृष्ण है और एक विष्णु है और लक्ष्मी नारायण।
विष्णु के दो रूप है लक्ष्मी नारायण, विष्णु के दो रूप है लक्ष्मी नारायण। जो विष्णु बनेगा या तो वो लक्ष्मी बनेगा या वो नारायण बनेगा, ठीक है? सुनो, क्योंकि राधा भी विष्णु बनी, कृष्ण भी विष्णु बना, और भी जो बनेंगे वो भी सारे विष्णु बनेंगे। ये विष्णु हमारा वर्तमान में क्या है, लक्ष्य है। वे सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है, सूक्ष्म वतन क्या है, साक्षात्कार का पार्ट वो भी ड्रामा में है, जो दृष्टिय दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। बुद्धि को क्या रखना है, विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। सदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गवाना है। शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वे पढ़नी है, माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, जो हमने अपना लक्ष्य बनाया है उसको हम अपने जीवन में धारण करें वाले प्रत्यक्ष से सैंपल बन सर्व के सहयोगी भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओते सो अर्ज। इसी से नंबर वन बने तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुण दान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। पहले क्या करो, स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम